ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमने बात जो की है वो अपने जीवन से जुड़ी हुई की है। जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि किस तरह से हमारे जीवन में अगर हम ज्ञान को सही परिपेक्ष में देखते हैं तो परिवर्तन संभव है। परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारी जिंदगी ठीक है तो हमें क्यों करना है परिवर्तन? क्योंकि कहीं न कहीं दर्द का अनुभव कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम भय में हैं, कोई न कोई ऐसी परेशानी है, चाहे वो मुझसे जुड़ी हुई है, चाहे वो अपने आसपास से जुड़ी हुई है, आसपास के लोगों से जुड़ी है, या फिर आती जाती परिस्थितियों से जुड़ी है। हमसे जूझा नहीं जा रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार हमने कोशिश की कि उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते जाएं, लेकिन वो किसी न किसी मोड़ पर और ऐसे मोड़ पर आती हैं जहां हम उन्हें नकार नहीं सकते। इसीलिए जरूरी है कि सही पहचान के साथ जो जो चीजें जुड़ी हैं उन्हें समझते हुए हम आगे बढ़ते जाए, ताकि हर पल जिस उत्सव को हम तलाश रहे हैं, जिस खुशी को हम तलाश रहे हैं, वो हम महसूस कर पाए। आज भी एक ऐसे ही सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फर्क है? कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है, लेकिन क्या वो मेरी ईगो हो सकती है? और क्या सही मायने में अगर हम देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ खास माउंट आबू से आई है बस सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा बहन। आपको बहुत बहुत स्वागत।
ओम शांति।
ओम शांति। उषा बहन, अगर हम देखें तो अब तो बहुत सी बातें हमने समझी हैं। ईगो को भी हम समझते हैं और हम ये भी बात जानते हैं कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक ऐसे विकार हैं जिनमें फंसकर और वो बॉडी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करते ही हमारे को आ जाते हैं। लेकिन कई बार बातें ऐसी आती हैं कि ये तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है, अगर मैं अपने ऊपर इतना भी मान नहीं रखूंगा, ये स्वमान की जो बात है, तो मैं तो जी नहीं सकता और मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना सॉफ्ट, इतना हम्बल होकर रहूंगा तो मेरी जिंदगी तो कोई भी, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो यहां पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, अभिमान या अहंकार का सही मायने में अर्थ क्या है?
ऐसा है कि अभिमान और अहंकार के तीन स्टेजेस है। पहली स्टेज है जिसको हम कहते हैं देहभान, एकदम हल्की होती है। उसके बाद जो स्टेज आती है उसको कहते हैं अभिमान, और जो एकदम लास्ट एक्सट्रीम की स्टेज होती है उसको कहते हैं अहंकार। अहंकार सबसे खराब है।
तो देहभान का मतलब हुआ बॉडी कॉन्शियसनेस।
बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। तो अहंकार सबसे खराब है कि जो अहंकार जैसे रावण के अंदर दिखाया कि दूसरों को कुछ समझना ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, वहां तक कि भगवान को भी कुछ नहीं समझना,
ये जानते हुए भी। हाँ। सबसे बड़ी बात ये थी रावण के साथ जो बात कही जाती है, ही न्यू एवरीथिंग एंड स्टिल।
उसके बाद भी जब ये समझ लेना कि भाई मेरे से कोई अच्छा है ही नहीं, ये फीलिंग्स में जब इंसान आ जाता है और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, ये कुछ नहीं है, और इस तरह से दूसरों को हर्ट करते जाना कि जैसे बस मेरा ही एग्जिस्टेंस सब कुछ मायने रखता है इस संसार के अंदर, मेरे सिवाय और कुछ नहीं, ये अहंकार बहुत बुरा है। हाँ, जब हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारा ये अहंकार का जो हिस्सा है वो एक रियलाइजेशन के द्वारा हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बीच वाली स्टेज है ना, देह अभिमान, ये देह अभिमान के अंदर सारी कमजोरियां समाई हुई है। इसलिए परमात्मा भी हमें कहते हैं कि देह अभिमान जो है वो सभी बुराइयों की जड़ है, जहां से सभी कमजोरियां उत्पन्न होती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, ये सब कुछ उसी में से ही, उसी की क्रिएशन है। और ये क्रिएशन जब आती है संसार के अंदर तो वो कहां ना कहां हमारे स्वभाव की कमजोरी जैसे बन जाती है।
बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं उषा बहन। कहीं ना कहीं अहंकार, जो देह अहंकार की बात कर रहे हैं, वो स्थूल है, वो बाहरी पे दिखता है, वो बाहर आ जाता है। पीपल आर एबल टू सी ही इज अ वेरी इगोस्टिक पर्सन, ये अपने आगे किसी को समझता ही नहीं। लेकिन देह अभिमान शायद थोड़ा सूक्ष्म है।
सूक्ष्म है,
हम खुद भी नहीं जान पाते,
खुद भी नहीं जान पाते हैं, और कहां ना कहां उस अभिमान की जैसे कोई ना कोई कमजोरी मेरे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाती है। और इस तरह से मेरे स्वभाव में वो आने लगती है कि शायद उसका एहसास हमें नहीं होता है,
हम उसे मान लेते हैं ये मेरे पार्ट ऑफ माय नेचर,
बस ये मेरा नेचर है ना। अब इतनी कमजोरी तो हर एक की होगी ना, और इसीलिए उसको एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्टेंस कि ये मनुष्य जीवन के लिए स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। अभी इतना होगा तो क्या हम बड़ी बात है, इस थोड़ा सा है ना, हम दूसरे की तरह तो नहीं है,
इतने उसके तरह अहंकारी तो नहीं है,
उसके तरह अहंकारी तो नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए इंसान को, ये समझ लेते। यानी हमने उस कमजोरी को जब स्वीकार कर लिया तो वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, जिसके कारण फिर सारे कर्म उसी के आधार पर चलने लगते।
राइट, ट्रू, ये सबसे आपने कहा खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया,
एक्सेप्ट,
जहां अहंकार में है वहां फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बाहरी भी हो चुका होता है कि हम अपने आप को, जैसा आपने कहा कि जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है हम अहंकार से बाहर तो आ जाते हैं, अभिमान से बाहर नहीं आते,
अभिमान से बाहर नहीं आते, और क्योंकि एक्सेप्टेड स्टेज है इसीलिए, तो इसीलिए बाहर आना बहुत कठिन है। और उसी को ही कई बार कई लोग अपना स्वमान समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में अभिमान शब्द की पहचान कैसे होती है, तो अभिमान शब्द जो है वो दो शब्द से बना है, अभि और मान। तो बड़ों का अभिमान क्या होता है कि अभी मेरी बात मानना चाहिए, ये है बड़ों का अभिमान, कि वो सोचता है ये छोटे मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, अभी उसको मेरी बात मानना ही चाहिए, और अगर मान लिया जाता है तो उसका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, और जहां नहीं माना तो रिएक्शन आता है। ये पहचान है कि जहां भी ईगो हर्ट हुआ, उसकी बात मानी नहीं गई, स्वीकारी नहीं गई, तो वहां ईगो हर्ट होता है तो तुरंत एक रिएक्शन आता है।
एंड रिएक्शन जरूरी नहीं है कि रिएक्शन जो बाहरी होगा, इंटरनल हर्ट में भी छुप भी हो जाते हैं,
इंटरनल, और वो इंटरनल इमोशनल लेवल पर अगर कार्य करने लगता है और इंटेलेक्चुअल लेवल पर कुछ प्लानिंग करना शुरू कर दे तो बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। और दूसरी बात कि छोटों का अभिमान क्या होता है कि अभी मान मिलना चाहिए,
सम्मान मिलना चाहिए,
मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, मैंने इतना जो किया उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अब ये लड़ाई दो अभिमान के बीच में है, बड़ा कहता है मेरी बात अभी मानना चाहिए, वो छोटा कहता है मान मिले तो मानू,
एक्सेप्ट, वेरी ट्रू,
है ना। अब ये दोनों बीच में टकराव होता है। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण में ले लूं कि एक घर के अंदर सास है, बहू है, अब सास ने कहा अब ये बहू जो है ना मेरी बात मानती नहीं, उसके अंदर यही भावना है कि ये मेरी हर बात उसी समय माने, और बहू कहती है इतना जो मानती हूँ लेकिन तो उसका एप्रिसिएशन है ही नहीं उसको, तो अभी मैं क्यों उसकी बात मानूं। तो वहां पर झगड़ा आरंभ होता है, और जब वहां पर झगड़ा आरंभ होता है तो एक मन मुटाव के रूप में आरंभ होता है।
वेरी ट्रू, एक्चुअली हम सब देख सकते हैं, इनफैक्ट भाई बहन बच्चों के आपस में जो हो रही होती है तब भी यही प्रॉब्लम,
माँ बाप बच्चों के बीच में भी होता है, भाई बहन के बीच में भी होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है। हस्बैंड सोचता है कि मेरी बात अब भी माने, वो कहते इतनी मानती हूँ उसको एप्रिसिएशन तो है ही नहीं। तो इसीलिए एप्रिसिएशन की चाहना कि मुझे जो मैंने अब तक किया है उसका एप्रिसिएशन प्राप्त हो, और एप्रिसिएशन मिल गया तो खुश, और जहां नहीं मिला तो दुख, बहुत दुख होता है, तो मेरे ईगो को हर्ट हुआ, तो वहां ईगो हर्ट होना शुरू होता है। तो इस तरह से ये अभिमान का टकराव आज समाज के अंदर, और ये इतना सूक्ष्म है, दोनों का अभिमान टकरा रहा है, लेकिन वो सोचता है नहीं मेरा अभिमान नहीं है,
मेरी तो मेरी क्या गलती है,
मेरे
को तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो मैंने इतना कुछ किया। बिल्कुल आप बहुत सही बात कर रहे हैं, इस वक्त बहुत जरूरी है हमें ये देखना कि कभी हम बड़े के अभिमान में होते हैं, कभी हम छोटे के अभिमान में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ये होता है कि मैंने इतना कुछ किया है, मुझे कहां मिला, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो मैं आगे क्यों करूं। और कभी कभी हम होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूं, समझा, ये भी हमें रहता है कि आप ही के भले के लिए तो कह रहा हूं, तो अभिमान लो।
अभी ये होता क्या है कि एप्रिसिएशन की भावना क्यों हमारे अंदर जागृत हुई, ये आया कहाँ से,
चाहत एप्रिसिएशन,
ये कहाँ से आई, आज की दुनिया की सभ्यता के हिसाब से कि हम अपने बच्चों को मैनर सिखाना चाहते हैं कि किसी ने कुछ भी दिया थैंक यू कहो, सॉरी कहो, ये बहुत अच्छी बात है, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ शायद कहीं जीवन के दूसरे पहलू को हम समझाना भूल जाते हैं बच्चों को कि ये थैंक यू सॉरी ये मैनर्स बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए उसने कुछ भी छोटा कार्य किया घर में, जब बच्चा बड़ा होता है कुछ भी छोटा कार्य किया हम उसको थैंक यू कह देते हैं, खुश हो जाता है बच्चा। या एक छोटे बच्चे को भी जब हम संस्कार डालने का प्रयत्न करते हैं तो उस वक्त उसको चॉकलेट देता है कोई भी तो हम उसको सिखाते हैं बेटा थैंक यू कहो, और वो इतना प्यार से थैंक यू बोल देता है। लेकिन जैसे जैसे वो समझने लगता है और उसको लगता है कि मतलब कोई भी चीज हमें देता है तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। अब वो कुछ कार्य कर रहा है, खेल रहा है, और मानो उसका पिता आया, माँ ने कह दिया बच्चे को बेटा तेरे डैडी आए हैं, पानी का ग्लास लेके जाओ। वो सब काम छोड़ करके वो थैंक यू सुनने की भावना अंदर में चाहत, तो इसीलिए पानी का ग्लास लेकर के जाता है। लेकिन पिता अपने टेंशन में है और उसने पानी पी लिया, थैंक यू बेटा, शाबाश बेटा, ये नहीं कहा, तो उसको लगा कि ये क्या मेरे को ही कहना है, इनको नहीं कहना होता है। तो दूसरी बार कोई उसको चॉकलेट देता है ना और आप उसको कहो बेटा थैंक यू कहो, वो नहीं कहेगा। कई बार उसको रिक्वेस्ट करते बेटा थैंक यू बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है, ये ठीक नहीं है, वो फिर भी नहीं कहता है।
वो हर्ट हुआ है
और हम उस भावना को समझ नहीं पाते हैं। और जब समझ नहीं पाते और वो थैंक यू नहीं कहता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, आजकल ये जिद्दी हो गया है, पता नहीं कभी तो इतना अच्छी तरह से बोल, लेकिन जिसने उसको थैंक यू कहा होता है ना, थैंक यू बेटे शाबाश, उसके सामने बोलेगा थैंक यू। लेकिन जिसने नहीं कहा, अप्रिशिएट नहीं किया, उसका दूसरे दिन अगर उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे डैडी आए पानी ले जाओ, कहता मैं बिजी हूँ आप ले जाओ, यानी उसको पता चल गया कि मैं लेके गया लेकिन मुझे मिलना तो कुछ है ही नहीं। तो ये एप्रिशिएशन की चाहत उस समय से आरंभ हो जाती है। और वो चीज जो एक मैनर्स के रूप में हम सिखाना चाहते हैं, वो चीज उसका ईगो का स्वरूप लेने लगता है।
वेरी ट्रू। और कहीं सटलली वो हर जगह से उम्मीद करने लगता है।
अभी क्या होता है कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उस समय तो हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते, चलो बहुत अच्छी उसने कोई भी छोटा काम किया, बहुत अच्छा बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, और अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब जीवन की वास्तविकता ये होती है कि जब उसको कॉम्पिटिशन के फील्ड में जब कदम रखता है, स्कूल लाइफ पूरी हुई, कॉलेज लाइफ पूरी हुई, उसके बाद जब वास्तविक जीवन में पैर रखता है और उस समय कंपटीशन की दुनिया है, वो जहां जॉब कर रहा है और वहां उसने इतना अच्छा क्रिएटिव माइंड से कार्य किया लेकिन किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, तो उस वक्त उसको इतना हर्ट होता है कि ये जीवन की वास्तविकता उसे स्वीकार नहीं होती है। और उसको लगता है कि माना मैंने इतना अच्छा किया और मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, और ही अगर उस समय कोई पॉलिटिक्स चल करके उसको गिराने का प्रयत्न
हो, बर्दाश्त नहीं कर पाता सिचुएशन,
तो उस वक्त वो डिप्रेशन की स्थिति में या इतने नेगेटिव विचार कि वो अपनी मानसिकता को हैंडल नहीं कर पाता है, तो एक कमजोरी किस तरह उसको डिप्रेशन का शिकार बना देती है।
लेकिन वो कमजोरी हमें तो समझ ही नहीं आई कि हमने कमजोरी दे दी अपने बच्चे को।
हाँ।
तो यहाँ इसका मतलब परवरिश में क्या परिवर्तन होना चाहिए, या मैं ऑलरेडी अगर इस सिचुएशन में हूँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इस अभिमान में, जिसे आपने कहा कि अभी मान मिल जाए या अभी मेरी बात मान ली जाए, वो दोनों में रह रहे हैं।
तो इसीलिए बच्चों को हम ये सभ्यता जरूर सिखाए लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी उनको जीवन की वास्तविकता का भी एहसास कराए कि ये कंपटीशन की दुनिया है, वहां जरूरी नहीं कि तुम्हें हर कदम में एप्रिसिएशन मिलेगा ही, लेकिन उस वक्त अपनी भावनाओं को कैसे हैंडल करना चाहिए। आज तो हम आपको दे रहे हैं ये एप्रिसिएशन और तुम उसको स्वीकार भी कर रहे हो और उसमें खुशी भी महसूस कर रहे हो, और यही तेरा बूस्टर है जीवन में आगे बढ़ने का,
इंस्पिरेशन भी तो मिलती है।
हाँ, उसमें इंस्पिरेशन मिल रही है, बूस्टर का कार्य कर रहा है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति आती है कि मैं अच्छा करूंगा, हर बार मेरे मम्मी पापा अच्छा मुझे कहेंगे। लेकिन जीवन की वास्तविकता ये है कि जब तुम कॉम्पिटिशन के मैदान में जाओगे तो उस समय सामने वाला जरूरी नहीं कि तुझे अप्रिशिएट ही करे, तो उस समय तुम्हारा स्वमान, अब वहां स्वमान आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। سیلف ریسپیکٹ کس کو کہا جائے؟ سوامان، یعنی میرے اندر جو کوالٹیز ہے، جو ایشوریہ دین ہے، بھگوان کی دی ہوئی دین ہے نا، تو یہ ایشوریہ کوالٹیز جو میرے اندر ہے اس کا میں ریسپیکٹ کروں. اور اس کا ریسپیکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ اس سے ادھک سے ادھک ریتی سے پریوگ میں لاؤں، اور جتنا زیادہ اس کو پریوگ میں لاتے رہتے ہیں اسی کے آدھار پر وہ وشیشتا ملٹی پلائی
بڑھتی جاتی ہے.
پرماتما ہم سب کو اتنی اچھی بات یہ سناتے ہیں، کیونکہ آج اگر پریکٹیکل دیکھیں تو کئی بار کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ بہنوں کے اندر یہ باتیں کہاں سے آئی. سب بہنوں جس کو بھی سنتے اتنی اچھی اچھی باتیں سناتے جاتے اور جیون ویوہارک سوروپ میں جو اپیوگی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ باتیں ہمارے پاس بھی کہاں سے آئی؟ تو دینے والا کون ہے؟ جیسے سے ایک اسٹوڈنٹ بہت ہوشیار ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو پڑھانے والا کون ہے، کس کے پاس ٹیوشن لیتا ہے جس نے اس کو اتنا ہوشیار بنایا؟ تو اس ویکتی کو شرے جاتا ہے کہ اس نے اس کو ایسا بنایا، تو ہم اپنے بچے کو بھی وہاں بھیجے جہاں سے وہ ایسا بن جائے. تو اسی طرح اگر ہم بہنوں کے پاس اگر یہ گیان کی باتیں آئی ہے تو سوچو کہ دینے والا پڑھانے والا کیسا ہوگا. اور اسی لیے باتیں آئیں گی. میڈیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باتیں نہیں آئیں گی، پرستھتی نہیں آئیں گی، سمسیا ہی نہیں آئیں گی، لیکن اس رہسیوں کو اتنا اچھی طرح سے جیون میں سمجھ لیا ہے کہ ہاں اس کو ہینڈل کرنے کی ودھی یہ ہے. تو سوامان کہ جتنا ہم اپنی کوالٹیز کا سیلف ریسپیکٹ، اس کا ہم ریسپیکٹ رکھے، اور اس کا ریسپیکٹ رکھنا مانا کہ کسی نے اپریشیٹ کیا تو ہی میں کروں، ایسا نہیں.
یہاں انفیکٹ اس میں یہاں پہ پرورش میں بھی ہمیں جو آج، کیونکہ آج جو ہم نے آپ نے جو بات لی ہے وہ 100 میں سے مجھے لگتا ہے 95% پیرنٹس ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب جہاں ہمیں مینرز سکھانا، جہاں ہمیں اپریشیٹ کرنا اپنے بچے کو، وہ صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو شاید اس کا سوامان بڑھانے کے لیے اس کے گنوں کے بارے میں اس کو بتا دینا
کہ بھائی اگر کسی نے اپریشیٹ کیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو تم اس کو اتنا اداس نہ ہو جاؤ کہ اس کا پریوگ کرنا ہی چھوڑ دو کہ ابھی آج کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں.
زیادہ تر لوگ یہ کرنے لگتے ہیں،
مانا مجھے کرنا ہی نہیں، اگر یہ سنکلپ لے لیا تو میں نے اپنی ایبلٹیز کا ریسپیکٹ کتنا رکھا؟ اگر مجھے ہی اپنی کوالٹیز کا، مجھے ہی اپنی وشیشتاؤں کا ریسپیکٹ نہیں ہے، مان نہیں ہے، تو ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ کہ دوسرے اس کا مان رکھے؟ تو سوامان مانا کہ ہم اپنی ایبلٹیز کو ریسپیکٹ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں. اگر کسی نے اپریشیٹ کیا تو اس کا تھینکس مانے، اور نہیں کیا تو بھی اداس نہیں ہو جاؤ، کیونکہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا اچھی طرح سے نہیں کیا جو اس کو دکھائی دیا ہے نا. ابھی اس کو میری ایبلٹیز یا میری وشیشتا نہیں دکھائی دی تو یہ کمزوری اس کی ہے یا میری ہے؟ یہ تو اس کی ہے کہ اس کے اندر پہچاننے کی درشٹی نہیں ہے. تو اس کی پہچاننے کی درشٹی نہیں ہے، اس کی یہ کمزوری ہے، اور اس کی کمزوری کو لے کر کے میں اداس ہو جاؤں تو یہ میری سمجھداری کتنی ہے؟
لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے لیے ڈیسیجن میکر ہے، خاص کر باس کی اگر بات کرتے ہیں یا ساس بہو والی بات بھی جو ہے، کیونکہ وہ میرے ڈیسیجن میکر ہو جاتے ہیں میرے جیون کے ڈیسیجن. کئی سٹھول چیزوں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیسیجن میرے وہ لے رہے ہوتے ہیں، تب ایکسپٹینس وہ، تب یہ ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ گھیرتا ہے.
لیکن اس سمے اس کا ادھک پریوگ کرے تو آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ اس کی درشٹی کھل جائے،
کیونکہ سچ جو ہے وہ سامنے تو آتا ہی ہے. جو آپ کی وشیشتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں سامنے آئے گی.
اور دوسرا جب کہے گا تو جب وہ کہے گا تو جب دو چار بار کہا گیا تو اس کے بعد تو ریئلائز ہوگا کہ ہاں ضرور کوئی بات ہے، شاید میں نہیں پہچان پا رہا ہوں. اور جب اس کے کاریہ میں وہ اپیوگی ہو جائیں گے اس دن تو پہچانے گا کہ میں نے محسوس نہیں کیا لیکن آج اس نے ہی میرے لیے یہ کاریہ کیا، یا اس نے ہی میرے لیے یہ دھیان رکھا، یا اس نے ہی میرے لیے یہ اپنی سہانوبھوتی دکھائی. تو اس دن تو محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اسی لیے آج نہیں تو کل تو وہ ریئلائز کریں گے ہی. اچھا چلو نہ بھی ریئلائز کیا لیکن میں اپنی اچھائیوں کو کیوں چھوڑوں؟ جو میرے جیون کا شرنگار ہے उसका रिस्पेक्ट तो मुझे करना ही चाहिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनकी जो एक्सेप्टेंस को ही इम्पोर्टेंस दे दी।
तो इसीलिए यही तो अज्ञान है ना, कि उसी की इम्पोर्टेंस को ही अगर सब कुछ देख करके चलते जाएंगे तो कहीं हमें अपनी विशेषताओं को छोड़ना, और ये छोड़ करके फिर कहीं उसकी जगह हमारे अंदर भी कमजोरी ना आ जाए। क्योंकि विशेषता अगर गायब कर दी हमने, उसको छोड़ दिया, तो उसका स्थान तो वो कमजोरी ही भरेगी, उसका स्थान कोई दूसरी विशेषता तो भरने वाला है नहीं। तो इसीलिए अभिमान है या नहीं है उसका प्रमाण क्या, कैसे पता चले मुझे? तो जहां मेरे अंदर अपमान की फीलिंग आती है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे अप्रिशिएट न करके अपमान कर दिया, तो ये अपमान की फीलिंग जहां आई, ये अपमान की फीलिंग आना माना ही मुझे अभिमान है। या किसी ने कुछ कह दिया, उसका मुझे बहुत ज्यादा फील हो जाना, उसने क्यों कहा, और इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाना उसके प्रति, ये बताता है कि मेरे अभिमान को ठेस लगी है। लेकिन स्वमान वाला ये सोचता है उसकी कमजोरी है, उसके अंदर पहचानने की दृष्टि नहीं है, उसके लिए मैं अपनी विशेषता को क्यों छोड़ूं? मैं अपनी विशेषताओं का सम्मान करते हुए उसका अधिक से अधिक प्रयोग करते चले, हो सकता है कि वो विधि सही नहीं हो, उसको इसीलिए पहचानने में नहीं आ रहा, तो हम विधि चेंज करें लेकिन अपनी विशेषता को छोड़े नहीं।
वंडरफुल। लेकिन यहाँ क्या हम उस व्यक्ति को भी रिजेक्ट कर दें? कभी कभी क्या होता है कि जब हमें ये लगता है कि उसने मेरा अपमान किया, जो वो दर्द मिल जाता है उसको, चलिए हम अपमान नहीं भी मानते, हम कहते हैं ओके उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मेरी बात को नहीं समझा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी क्या क्वालिटी है, मैं उसको मेंटेन करूंगा, तो मैं उस व्यक्ति को भी रिजेक्ट करने लग जाता हूँ कि ये मुझे मेरी बार बार मेरी बेइज्जती करेगा, या बार बार मुझे इंसल्ट करेगा, बार बार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो देन आई रिजेक्ट दैट पर्सन। इज इट द राइट वे? वो भी कहीं ना कहीं अभिमान जुड़ा है।
वही अभिमान है, तो इसलिए रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन हम उस आत्मा को भी देखें, उसकी शुद्ध क्वालिटीज को देख करके उसके प्रति अच्छी भाव। तो जो स्वमान वाला व्यक्ति होगा ना, उसकी पहचान वो है कि वो दूसरे के प्रति शुभ भावना के वाइब्रेशंस को देगा, और वो दूसरे का सम्मान करेगा, वो उसका सम्मान इस तरह से करेगा ताकि उसको फील हो कि मैंने उसका इंसल्ट किया, उसके बाद भी तो उसको एम्बैरेसिंग लगेगा।
लेकिन वो सम्मान जो कर रहा होगा वो हर्ट के बात कर रहा होगा, अपमान? देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कहते हैं उसने मेरा इतना अपमान किया, लेकिन मैं उसको इतना सम्मान दे दूंगा कि उसे मेरा सम्मान करना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत एक सूक्ष्म स्तर पर अगर हम देखते हैं तो एक वो नेगेटिविटी ही मुझे लगता है कि वो है।
नहीं, शुभ भावना, इसीलिए कहा पहला रिएक्शन जो रहेगा शुभ भावना, उसके प्रति अच्छे वाइब्रेशंस दें। आज की दुनिया के अंदर अगर दुराचार से हम आगे बढ़ेंगे कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं, तो उससे कभी भी विजयी नहीं हो सकते, वो भी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दुराचारी को अगर पराजित करना है तो सदाचार से करना है। पॉजिटिव एनर्जी, स्वमान जो है वो आज नहीं तो कल, अगर हमें अपनी क्वालिटीज के प्रति आदर होगा, उसका हम आचरण में लाते हुए सदाचार वाला जीवन जीने आरंभ कर देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसी से प्रभावित होता है। आज दुनिया में जितनी भी महान आत्माएं हैं, उनके इतने अगर लोग प्रभावित होकर के उनके पीछे जाते, उनका सदाचार ही तो है जो लोगों को प्रभावित करता। और जिस दिन जिस व्यक्ति ने उनकी कमी कमजोरी को देख लिया, उनका कोई दुराचारी वाला व्यवहार देख, वहां से कट जाता है, है ना? तो ये अभिमान और स्वमान है, कि स्वमान माना हम अपने सद्गुणों का आचरण में ला करके अपना जीवन उसी के आधार पर जिए, जो एक स्ट्रेंथ बन जाती है हमारी, एक ऐसा आधार हमें प्रदान करता है जहां से कॉन्फिडेंस हर वक्त हमारे अंदर रहता है।
वेरी ट्रू।
जहां जो कर्म हम करते हैं वो हमें एक सुकून देता है, और वो अभिमान वाला जो है एक खोखला आधार है।
और सही बात है,
जो कभी भी गिर सकता है।
और अपमान का जो हम अपमान के घूंट पीने वाली बात जो है, अपमान का एहसास अगर हमें हो रहा है तो हमें मान लेना चाहिए कि हम अभी अभिमान में हैं।
हाँ। और तीसरी स्टेज जो सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म, वो है देह भान। माना कांस्टेंट मेरे देह के लिए ही मुझे ख्याल चलता रहे कि ये खाने से ये हो जाएगा, ऐसा खाने से, माना हर वक्त हम उसी कॉन्शियसनेस में है कि मैं अपनी देह को कैसे ठीक रखूं, अरे भाई नेचर का है, आप अपने आप में अगर सही कर रहे हैं तो आपको कोई वक्त वो भय की आवश्यकता नहीं। तो देह भान में जब इंसान आ जाता है तो भय क्रिएट होता है। तो एवरी मोमेंट ये कॉन्शियस रहना कि कहीं ये मुझे न लग जाए, ये मुझे न, अरे भाई हम स्वस्थ है, हम अपने आप को इतना सशक्त कर दें कि वो चीजों का हमें इफेक्ट ही न हो, इस तरह से हम अपने आप को बना ले तो क्यों हमें डरने की आवश्यकता है।
राइट, ट्रू, बहुत अच्छा लगा। और हर बार की तरह आपके साथ बात करते हो हमें समय का पता ही नहीं चल पा रहा मुझे बहन, लेकिन आज जो बातें की हैं वो इतनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अभी भी कई चीजें ऐसी थी, और खासकर अभिमान वाली जो बात है कि अहंकार तो बहुत सुंदर हमने बात की है आज की, अहंकार तो बिल्कुल दिखता है स्थूल रूप में, दूसरे वाला भी बता देता है कि हाँ ये अहंकार से घिरा हुआ है, लेकिन अभिमान जिसको हमने अपने स्वभाव का हिस्सा बना लिया है वो हमें महसूस ही नहीं हो पाता। और देहभान की जो बात आपने की कि कंटिन्यूअसली हम इस थॉट में रहते हैं कि मुझे ये ना हो जाए, मेरे कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए, मुझे ये ना हो जाए, मेरे को अपने शरीर का ध्यान रखना है, ये करना, ये भी एक बहुत बड़ी जो भय का जो फैक्टर है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
देखना ये है कि हम किस स्टेज में है, और मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपमान को महसूस करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग हर्ट होते हैं, कईयों का रिएक्शन ओपन हो जाता है और हम ओपनली रिएक्ट करते हैं, कहीं हम इंटरनल हर्ट ले लेते हैं, लेकिन जहां हर्ट है वहां अभिमान है। आज इस सूत्र को अपने साथ लें और ये समझें कि अभिमान को स्वमान में कैसे परिवर्तित करना है, खुद पर जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि दूसरे की परिस्थिति से, दूसरे की बात से अपने आप को बदलने की बजाय खुद को पहचान कर खुद की विशेषताओं के साथ और खुद की कमजोरियों, जिसमें अभिमान एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे सामने आ रही है, उसको समझते हुए हमने उस परिवर्तन को अपनाना है। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बात हो जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, तो आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं। और आपको बता दें कि नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in or call us on 09999559660।
आज की बातचीत बस इतनी ही, लेकिन आगे आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।